الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي بزرگان محترم عزیز دوستو اور بھائیو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ ایک بہت ہی مبارک نسبت پر جمع ہیں اور وہ ہے دین کی مجلس میں تھوڑی دیر شرکت کرنا اور یوں ان حضرات کی جو علماء اور اکابر تشریف لائے ہیں ہمارے محمد حسین بھائی اور ان کے جملہ اعزاء اور اقربا اور ادھر دوسری جانب بھی دلہا کے ذمہ دار مسئول والد اور دوسرے رشتہ دار ان سب حضرات کا بزرگوں سے علماء سے جو گہرا ربط ہے تعلق ہے اس نے ان کے گھر کی ایک نکاح کی مجلس کو جس کو اگر لوگوں کے پروگرام سے قطع نظر کہا جائے تو ایک پرائیویٹ مجلس ایک نجی مجلس ہے لیکن اس تعلق کی برکت سے انہوں نے اس کو ایک دینی مجلس بنا دی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ معاملہ صرف گھر کی شادی کا ہے لیکن انہوں نے گاؤں کے تمام دینی بھائیوں کو اس بات کا موقع عطا فرما دیا کہ وہ اہل اللہ اور اکابر کے بیانات ان کے ملفوظات اور ان کی شخصیات کی آمد سے وہ مستفید ہوں آپ نے ماشاءاللہ سن ہی لیا حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی جو اس وقت دارالعلوم دیوبند میں افتا کے بہت ہی نازک منصب پر فائز ہیں اور جن کی 50 سالہ خدمات افتا ہی سے متعلق ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مختلف جگہوں پر حدیث شریف کا درس دیا اور ایک علمی شخصیت ہیں پھر اس کے بعد جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے حدیث شریف کے بھی استاد ہیں اور بڑی نسبتوں کے مالک ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں اور کل آپ کے سامنے ہوں گے. ان کے والد گرامی قدر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. کون ہندوستان کا رہنے والا فرد ایسا ہے جو ان کی علمی دینی سیاسی اور بزرگانہ اور خانقاہی خدمات سے واقف نہ ہو؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی آزادی میں اور ان کے استاد گرامی نے جو خدمات انجام دیے وہ سونے کے پانی سے جس کو آب زر کہتے ہیں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی برکت سے اس وقت بھی ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کو زندہ کر رکھا ہے اور اس وقت کی مجلس کے روح رواں حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب دامت برکاتہم ومد اللہ فیوضہم جو میرٹھ یو پی کا ایک بہت بڑا مرکزی شہر ہے وہاں کے ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے, مختلف زبانوں پر قدرت, اور اس قدرت کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب کی پوری بصیرت کہ یہ مذہب کیا ہے, کیا حقیقت رکھتا ہے, اور اسلام کو اس پر کیسے فضیلت اور برتری حاصل ہے, یہ خصوصی فن اللہ نے حضرت مولانا کو عطا فرمایا. اور اس سے پہلے بھی گجرات میں حضرت کے کئی جگہوں پر سفر ہو چکے ہیں, مختلف ممالک میں, انگلینڈ, افریقہ, کینیڈا میں حضرت کے اسفار ہوتے ہیں اور دینی افادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آنے والے بزرگان دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور پھر دونوں میزبان, دونوں دلہا اور دلہن کے والدین, ان کا تعلق گجرات کے تقریباً سبھی علماء اور اکابر سے ہے, اور ماشاءاللہ کل بھی بہت سے اکابر گجرات کے تشریف لائیں گے. ان حضرات کی مجلس میں بیٹھنا بھی, چاہے بیان کسی ایک کا ہو یا ایک کا بھی نہ ہو, بہت مفید ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, جن کے خلیفہ حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. وہ ان کا ایک جملہ بڑا عجیب ہے, فرماتے ہیں جس کو ہمارے سکوت سے فائدہ نہ ہو اس کو ہمارے بیان سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. اگر مجلس سکوت ہے, خاموش ہیں اور کوئی بیان نہیں فرما رہے ہیں, تو ان کا بیٹھنا بھی بغیر کسی زبان کے ملفوظ کے بہت مفید اور اکثیر ہوتا ہے. اور ہمارے شیخ حضرت شاہ باالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں, یہ فرمایا جیسے رات کی رانی, رات کی رانی جانتے ہو؟ ابھی رات کی رانی جانتے ہو نا, انہیں جو گھر میں ہوتی ہے, گھر کے باہر بھی ہوتی ہے, اس کی خوشبو بڑی مشہور ہے اور بڑی عجیب بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے. گھر میں جو ہے وہ بھی رانی ہے, اس کو بھی رانی سمجھو. آج ہی کوسما میں بیان کیا, اللہ تعالیٰ نے بیان میں یہی بات کہلوائی کہ گجرات والے تو بیویوں پر حکومت کرتے ہیں, محبت کرنا جانتے ہی نہیں. اللہ چائے بناؤ جے, بے مہمان آ رہے تھے کھاؤ مہمان جے, بس ان کے جملے ہی یہ ہوتے ہیں. کوئی پیار محبت کا لفظ ہے کہ بھائی میرے خاص دوست آئے ہیں, میرے احباب آئے ہیں, اگر تم تھوڑی تکلیف کر لو, ان مہمانوں کی خدمت کر لو, تو اس کا دل بڑھتا ہے. اور ایک ہمارا مزاج یہ ہے کہ گھر کے کام میں ذرہ برابر ساتھ نہیں دیں گے, بڑی مصیبت ہے. اور یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, یعنی کوئی دور کی بات بھی نہیں, اور سنا ہوا واقعہ بھی ہے کہ شوہر بیٹھا ہوا ہے پانی کے مٹکے کے پاس اور بیوی مطبخ میں ہے, کام کر رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے, उसको बुलाएंगे, ओ आयशा फातिमा यहां आओ जाए, या पानी पियो आओ जाए। अरे खुदा के बंदे, तेरे हाथ पैर नहीं है, टूट गए हैं क्या? मटका तेरे पास रखा हुआ है चंद कदम पर, और तू मतबख से अपनी बीवी को बुला रहा है नाम लेकर। हमारी तहजीब और शराफत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वरना जो इलाके तहजीब और शराफत के कहलाते हैं वहां पर बीवियों का नाम लेना भी ऐब कहलाता है। बीवियों का नाम भी बच्चे के वालिदा के नाम से पुकारते हैं, बच्चों से कहते हैं अपने अम्मी जान को बुलाओ, ये नहीं कहते कि हम डायरेक्टली उसका नाम लेकर पुकारिए। हमारी बिल्कुल बदतहजीबी है गुजरात की, मरियम आयशा फातिमा, और फिर उसमें भी नाम बिगाड़ बिगाड़ कर अल्लाह ही जाने क्या क्या नाम लेते हैं, अभी मैं उसको सुना नहीं चाहता, अल्लाह माफ करे। तो वाकई वो रानी है, अगर हम उसको मोहब्बत के साथ प्यार के साथ बात करें तो देखिए फिर वो आपके साथ कैसा ताल्लुक का इजहार करती है। मैंने हदीस सुनाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या शांति, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, तमाम पैगंबरों के सरदार, तमाम इंसानों में अफजल, जब घर में तशरीफ लाते कान यखदुम नफ्सहु, अपने घर का काम खुद कर लेते, वयफली सौबहु, कपड़ों में अगर जू वगैरह देखनी हो तो बीवी को नहीं कहते जा देख ले तू, खुद ही आप तलाश कर लेते कहीं जू आ तो नहीं गई कहीं से, उसको झाड़ देते खत्म कर देते। वयहलुबु शातहु, बकरी का दूध खुद धोते थे। तो जब इंसान घर में जाकर घर जैसा बन जाएगा, घर वालों की खिदमत करेगा, मेहमान आपके आए हैं, दो हैं चार हैं मेहमान, तो आप जब मेहमान का वो खाना पका रही हो तो कभी थोड़ा बहुत ताउन आप भी कर दें, दो चार प्लेट आप भी धो लें, अगर वो गोश्त पका रही है तो आप प्याज काट के रख दें, आप सलाद बनाकर रख दें, कुछ तो कर सकते हैं। हम तो मतबख में जाने नहीं जानते, यकीन जाने जिस दिन आप अपने घर में अपने अहलिया का साथ देंगे और उसके साथ रहना शुरू करेंगे और उसके कामों में ताउन कर देंगे, वो आपके ऊपर बिछ जाएगी। आज ये बात नहीं पैदा हो रही है, लड़ाई, शादी हुई निकाह हुआ और लड़ाई शुरू हो गई, महीने में दो महीने में इसके मेहमान आ रहे हैं, इसके ये आ रहे हैं, इसके वो आ रहे हैं। एक किताब छपी है अभी सऊदी अरब में, मैं लेकर आया, अरबी में है, उसमें बेशुमार वाकयात लिखे हैं शबे जफाफ के, पहली रात में क्या क्या किस्से बनते हैं, किसकी तलाक, किसकी कैसी मोहब्बत के साथ मिले या कैसी एक ही रात में तलाक हो गई, बहुत सारे अजीब अजीब वाकया। एक वाकया बड़ा अजीब लिखा है, बस ये वाकया हमारे जहन में आ जाए। औरतें सुन रही कि नहीं सुन रही भाई? औरतें सुन रही? इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि, क्या फायदा, औरतों को नहीं सुनाया तो किसको सुनाओगे? हम तो समझेंगे भाई यहां बयान है तो औरतें भी कहीं होंगी, सुन रही होंगी। चलो है ठीक, निकाह हुआ पहली रात शबे जुफाफ, जितने थे सब रुखसत हो गए और अचानक घंटी बजी, फोन की घंटी, फोन आया कि हम मेहमान हैं और अभी इस वक्त आ रहे हैं, कुछ मेहमान बाकी होंगे मिलने के लिए, किसी वजह से रुक गए होंगे, कार खराब हो जाती है, होती है। जब सारा मसला निमट गया, खाना पीना, दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब रुखसत हो गए और दोनों मियां बीवी की तन्हाई, ये फोन आया कि अच्छा भाई बहुत अच्छा, मरहबा अहलन वसाला। उसके बाद ये फौरन घर से बाहर निकला शोहर कि देखूं जाकर कोई चीज तैयार खाने को मिले तो मिल लिया हूं। अरबों में मेहमान नवाजी बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। वो गए, इत्तेफाक से इतनी देर हो चुकी थी कि होटलें सब बंद हो चुकी थी। तो फिर एक बकाला जो किराना की शॉप कहलाती है, वहां से वो कुछ आलू प्याज और इस तरह की कुछ सब्जी वगैरह उठा लाए, जो मिला वो, रात के 10-11 बजे के बाद की बात है, मुमकिन और भी लेट हो गया हो। अब किस तरह कहें अपनी दुल्हन को जो अभी अभी निकाह में आकर शबे अरूस की कैफियत है कि भाई खाना पकाना है। उसने सोचा कि चलो मैं खुद ही कुछ काम करना शुरू कर दूं। तो उसने लिया, लेकिन वो दुल्हन भी बड़ी अजीब थी, तरबियत याफ्ता थी। माँ बाप ने सिखाया था, समझाया होगा कि देखो शौहर के घर जाकर हमें किस तरह है ना घर जैसा बन जाना। कहती है कि दुल्हन जो है फौरन देख करके शौहर ने कुछ काम शुरू कर दिया है, मतबख में उठी, कपड़े उतारे और कहा कि अच्छा ये काम मैं कर लेती हूं। सुनने जैसा वाकया, ये काम मैं कर लेती हूं। और मेहमान भी कितने थे? 10 मेहमान थे, एक दो की बात नहीं है, 10 मेहमान आ रहे थे। तो उसने फौरन उठकर खाना पकाना शुरू कर दिया, जो भी लेकर आया था वो, और उसको उसने पकाना शुरू कर दिया। प्याज काट रही है, आलू काटे उसने, प्याज काटे हुए आंख से आंसू तो निकलते ही हैं। बाल उसने उसी तरीके पर पूरा खाना पकाया, ये पहली रात का किस्सा है। खाना पकाया, मेहमानों के सामने रखा, उन्होंने हंसी खुशी खाया पिया और वहां से रुखसत हुई है। रुखसत होने के बाद दुल्हा दुल्हन को एक पोटली देता है, कहने के ये तुम्हारे लिए। कहने क्या चीज है? क्या असल में ये हमारे 10 दोस्त थे, मेरे पास से कर्ज ले गए थे। मैंने उनसे कहा भी था कि भाई मेरी शादी आ रही है, मुझे उसमें जरूरत है, अगर आप मेरा कर्ज अदा कर दें। इत्तेफाक से वो वक्त से पहले आ नहीं सके, अभी उनका कर्ज जमा हुआ, उन्होंने लाकर मुझे दिया। हर शख्स के पास 5-5 हजार रियाल कर्ज था, हर शख्स के जिम्मे, तो कुल 50 हजार रियाल हुए। तो कहा ये पूरे 50 हजार रियाल जो है ये तुझे हदिया है। तो भाई तुम्हारा कर्ज है, मुझे हदिया क्यों? कहने के आज की तुम्हारी खिदमत मुझे ऐसी पसंद आ गई कि अगर उस पर मैं जान भी निछावर कर दूं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। ये होती हैं बीवियां, शौहर का मौका महल भी पहचानती हैं, देखती हैं कि आखिर ऐसे वक्त में अगर आया है फोन और मेहमान आ रहे हैं, तो एक तरफ बीवी को ऐसा होना चाहिए और दूसरी तरफ शौहर की भी कदर ये होनी चाहिए कि जो कुछ रकम आए थे वो उसी को हदिया कर दिया। बीवी भी खुश हो गई कि अल्लाह अकबर, नेमतें गैर मुतरक्कबा मुझे हासिल हो गई। हमारा एक दोस्त है, मुझसे इस्लाही ताल्लुक रखते हैं, कहते हैं कि भाई मैं जब खाना खाने बैठता हूं मुझे बीवी पर बड़ा गुस्सा आता, जरा नमक कम हुआ तो मैं प्लेट उठाकर फेंक देता हूं। ऐसे भी लोग होते हैं, जरा कुछ गोश्त न पका हो कच्चा हो तो बस मैं उसी वक्त जलाल में आ जाता हूं। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे भी कहते हैं कि अब्बा जी हमें आपका गुस्सा जो है वो दस्तरखान ही पर मिलता है। बच्चे भी समझदार हैं, 15-17 साल के, कहना अब्बा जी के जलाल और गुस्सा जो हमने वहीं देखा। तो मुझ पर उन्होंने ये बात बताई कि भाई मेरी ये कैफियत है। मैंने कहा अच्छा, आइंदा जब भी कभी दस्तरखान पर आपको गुस्सा आए तो आप उसी वक्त 20 पाउंड निकालकर बीवी को हदिया करें, यह आपकी इसलाह है। दूसरे दिन फोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह इसलाह हो गई। मैं कहा अगर आपकी इसलाह न होती तो फिर मैं ये कहता कि 50 पाउंड दें, अगर 20 पाउंड देकर भी आपका गुस्सा ठंडा न होता। ये हमारे बुजुर्गों की तालीम है, जुर्माना मुकर्रर करते हैं कि भाई जुर्माना दो, बीवी पर ही गुस्सा आ रहा है तो अच्छा बीवी को 50 पाउंड हदिया दो। फिर तो बीवी कहेगी हाँ भाई और जरा मुझ पर गुस्सा करो ताकि और हदिया मिले। आज तहजीब और मुआशरत यूरोप की इतनी खतरनाक हो गई है कि उसने मियां बीवी के रिश्ते को बिल्कुल ही टूटने के करीब बना दिया। पहली रात को तलाक, दूसरी रात को तलाक, महीने में तलाक, बच्चा पैदा हुआ फिर तलाक। तलाक की इतनी कसरत हो गई कि साउथ अफ्रीका में एक साहब कहने लगे कि मौलाना ये जो रजिस्टर में लिखा रहता है कि डेट ऑफ इशू किस तारीख को ये निकाह हुआ है, तो उसके साथ साथ आखिरी कोने में एक और भी डेट होनी चाहिए, किस चीज की डेट ऑफ एक्सपायरी, कि भाई ये निकाह खत्म कब हुआ। इतने निकाह टूट रहे हैं, कोई निकाह इस लायक में रहा है कि वो बाकी रहे। अल्लाह अकबर, पहले जमाने में निकाह हुआ करते थे, कैसी सादगी के साथ और जिंदगी भर के लिए। एक मरतबा डोली आई, मौलाना अंजर शाह साहब रहमतुल्लाह ने किसी जगह पर ये जुमला सुनाया कि भाई हमारे यहां तो ये होता था कि घर में अगर डोली आए तो फिर तो खटोली बनकर ही निकलेगी। खटोली यानी खाक यानी जनाजा, बीवी का जनाजा ही फिर निकलता है, फिर उसको कोई और चीज निकाल नहीं सकती। वो हमेशा के रिश्ते हुआ करते थे, मोहब्बतें हुआ करती थी। आज मोहब्बत जो है हमारे अंदर से निकल गई, फुटपाथ की चलने फिरने वाली आंखों में आ जाती है कि बस कहने के लायक तो वही है, तू तो पता नहीं कहां से चली आई मेरे निकाह में। हजरत हकीम अख्तर साहब फरमाते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरी वालिदा ने 11 नंबर का चश्मा पहनकर तेरा इंतखाब किया था और तू मेरे घर में आ गई। जब इंसान बाहर की सड़कों पर निगाह खराब करता है तो उसका नतीजा ये होता है कि घर वाली से मोहब्बत खत्म हो जाती है। तो बहुत जरूरी है। अब बहुत से ये कहते हैं कि मियां आप ये तो बयान करते हैं कि शौहर ये जुल्म करते हैं, औरतें क्या जुल्म करती, वो तो बयान ही नहीं करते। एक मतलब एक बयान हो रहा था तो उस बयान में एक आलिम ने यह कहा कि भाई अल्लाह ताला इन दुनिया की बीवियों को जन्नत में हूरों से ज्यादा हसीन करके अता फरमाएंगे। तो एक साहब कहने लगे कि मौल साहब दुनिया में सुन सुनकर थक गया हूं, अब ये तो वहां चाहिए ही नहीं, बीजी कई हो तो चाल है पर आए तो नहीं जो है, थाती गए ना थी, थक गए बिल्कुल। तो बात औरतें भी ऐसी होती है, लेकिन बात यह है कि रिजाल कवामून आलन निसा, मर्द जो है वो औरतों पर हाकिम है। जैसा मर्द होगा, वो आपने ये भी सुना होगा, जैसा देश वैसा बेस, अन्ना सला दीनी मुलू की हिम, अरबी जबान का लफ्ज है, जैसा बादशाह होता है वैसी उसकी रियाया होती है। तो असल मदार जो है वो शोहर पर है, शोहर को प्यार मोहब्बत भी सीखना चाहिए और साथ ही साथ हुकूमत किस तरह की जाए वो भी सीखना चाहिए। ये दोनों बात जब सीखी जाएगी फिर उसको घर चलाना आएगा, उसके बगैर घर चलाना नहीं आता। आज हम सब कुछ पढ़ते हैं, बीए हो गए, एमए हो गए, बकौल हमारे उस्ताद के बीएलएल बैल हो गए, वो बीए और एमए को जो है वो मुख्तसर करके फरमाते बीएलएल बैल हो गए। तहजीब कुछ नहीं, तालीम कुछ नहीं, दीन कुछ नहीं, अखलाक कुछ नहीं। तो दुनियावी तालीम उलूम और फनून पढ़कर इंसान कभी भी महजब इंसान नहीं बन सकता। दीन की तालीम जब तक नहीं आएगी और दीन से इंसान जब तक मुत्तसिफ नहीं होगा, उस वक्त तक वो अखलाक, वो तरबियत, घर में किस तरह रहना है, बीवी बच्चों के साथ किस तरह जिंदगी गुजारनी है, ये इंसान को आता ही नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सी किताबें छप गई, तोहफतुल उरूस नाम है, और क्या क्या नाम है, तोहफतुल ज़ौजैन उर्दू में, गुजराती में, अंग्रेजी में, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने हर जबान में काम कर लिया। जिन बच्चों और बच्चियों की शादी हो वो उसको पढ़ें। अभी एक किताब छपी है तोहफे दुल्हन, और मर्द के लिए भी छपी है तोहफे दुल्हा, पढ़ने जैसी किताब है, पाकिस्तान में छपी है, यहां भी छप रही है, अब वहीं किसी आलिम के लिखी हुई अजीब व गरीब किताब है। तो कम से कम उनके मुताले में ये किताबें आए, निकाह से पहले महीना दो महीना पहले, भाई किस तरह बीवी को शोहर के साथ रहना है, शोहर को बीवी के साथ रहना है। बहाल मेरे जिम्मे उनवान था तारुफी कलिमात, लेकिन बात कहीं और चली गई। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मियां बीवी जो आइंदा कल बनने वाले हैं दुल्हा और दुल्हन, अल्लाह ताला उनके निकाह को मुबारक फरमाए, बेपनाह खैर और बरकत अल्लाह ताला अता फरमाए, दाइमी उल्फत और मोहब्बत का रिश्ता कायम रखे, न सिर्फ दो मर्द और औरत में बल्कि दोनों खानदानों में, और उनके जरिए से बहुत से खानदानों के अल्लाह ताला जुड़ने का जरिया बन जाए, और फिर जितने भी निकाह हो रहे हैं मुसलमानों में अल्लाह ताला उन तमाम निकाहों को खैर उल्फत के साथ बरकत के साथ कायम रखे और उम्मत मुहम्मदिया में इजाफे का सबब बने। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। खुतबे के निकाह में तीन आयतें पढ़ी जाती हैं, उसमें चार मरतबा तकवे का हुक्म है, उसमें से एक आयत मैंने पढ़ी थी सिर्फ तर्जुमा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो ऐसा जैसे डरने का हक है। तो डरने वाली आयत निकाह के खुतबे में क्यों रखी गई, इसलिए कि जितना अल्लाह से डरकर इस रिश्ते में चलेंगे उतनी ही इस रिश्ते में बका पैदा होगा, और अगर दुनिया के माहौल को सामने रखकर चलेंगे तो दुनिया हमेशा तोड़ सिखाती है, जोड़ नहीं सिखाती। وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا یہ دیکھ دیکھ کر اگر چلنا ہے وہ پھر رشتہ باقی نہیں رہتا اللہ کا تقوی اپنی زندگی میں پیدا کیا جائے اور ہر حال میں دیکھا جائے بھئی اس وقت شریعت کا کیا حکم ہے کوئی بات گجلت پیش آ گئی میاں بیوی میں کبھی نا اتفاقی کی دونوں کے جو بڑے حضرات ہیں وہ جمع ہو کر اس کو سلجھانے کی کوشش کریں نہ ہو تو پھر دو محلے کے یا شہر کے دو چار آدمی ملیں اور سلجھائیں اس کو الجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر وہ رشتوں میں بقا ہوتا ہے اور نکاح کا مقصد ہی ہے جو رشتہ آج ہو گیا اس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں اللہ تعالیٰ ان مومن اور مومنہ کو جنت میں بھی ساتھ رکھیں گے اور دنیا میں جو کچھ بھی دل کی کھوٹ ہوگی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جائیں بلکہ قرآن شریف کا مضمون ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اس دنیا میں جتنا بھی سینوں میں کینہ کپٹ ہوگا بد اخلاقی ہوگی بد عنوانیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے نکال دیں گے اور پھر یہاں اگر حسن و جمال میں کبھی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو حور عین سے زیادہ حسین اور خوبصورت بنا دیں گے یہ روایت ہے اور کیوں حور عین سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا میں نماز پڑھتی ہیں روزے رکھتی ہیں نیک اعمال کرتی ہیں صدقہ اور خیرات کرتی ہیں ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید نور عطا فرمائیں گے جو حوروں کے نور سے بڑھ جائے گا اللہ ہمیں دین کی تمام باتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب ماشاءاللہ بہت لمبا سفر کر کے اور پر تعب پر مشقت اور بجائے مختصر کے بہت طویل سفر ہو گیا بڑے مجاہدے قربانی سے تشریف لائے ہیں میری درخواست ہے کہ آپ حضرات جم کر حضرت کے ملفوظات حضرت کی باتوں کو سنیں اور زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ
یہ سعید بھائی دادا بھائی اور محمد حسین دادا بھائی ان سے درخواست ہے کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں اسی طرح ایوب بھائی کاکا مولانا ایوب صاحب جازی ہے ابراہیم بھائی داری سے تھے ان سے درخواست ہے کہ حضرت اوپر تشریف لے آئیں کافی جگہ خالی ہے